वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक नहूम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक के परिचय को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ दूर दूर बैठ करके भी कर सकते हैं। आज जब हम नहूम के पुस्तक से अपने अध्ययन को करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में, हृदय में कार्य करने पाए और हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, हर एक प्रकार की दुनियावी चिंताओं से आप उनकी रक्षा करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं। आप उन्हें भी छुए, चंगाई दें और अपनी महिमा लें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम नहूम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें नहूम अश्शूर देश के सर्वनाश या विनाश की भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर उनसे अप्रसन्न हुआ क्योंकि योना ने उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाया था और उसका वचन सुनकर उस पीढ़ी ने परमेश्वर का भय मानकर अपने पापों से मन फिराया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन पर तरस खाकर उन्हें क्षमा किया। परंतु एक पीढ़ी समाप्त होने के बाद जब दूसरी पीढ़ी आई, तब वे पुनः अपने कुमार्गों पर चलने लगे। अतः परमेश्वर ने उनसे रुष्ट होकर उन्हें दंड देने का निर्णय लिया। इस बार उन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्हें जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का प्रकाशन उन्हें प्राप्त था, परंतु उन्होंने उसे तुच्छ जाना। मेरे मित्रों, कोई मनुष्य हो या कोई देश, पाप करने की एक सीमा होती है और पाप की सीमा पार करना असंभव नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि वह सीमा क्या है या ऐसा कब होता है। मैं निर्धारित करने योग्य नहीं हूं, परंतु यह तो निश्चित है कि ऐसी एक सीमा है जब आप उस स्थान या सीमा को पार कर जाते हैं तब ऐसा नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह वहां नहीं पहुंच सकता, परंतु आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपका मन कठोर हो गया है और आप अविश्वास की अपरिवर्तनीय दशा में आ जाते हैं। यह किसी भी देश या किसी भी मनुष्य के लिए सच है। जब आप आज की दशा को देखते हैं तो आपका निराश होना स्वाभाविक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर के जनों में से बहुत से विश्वासी व्याकुल हैं। मेरे विचार में यही एक कारण है कि भविष्यवाणियों में हम ऐसी रुचि रखते हैं। भविष्यवाणी के शिक्षक जितना अधिक परमेश्वर के वचन को बताते हों, उतना ही अधिक वे जनप्रिय हो जाते हैं। वे नाना प्रकार की व्याख्याएं देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के जन आज की घटनाओं को देख परमेश्वर के वचन को जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 26 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, आज निश्चय ही हम इस स्थिति में हैं। इन बातों से हम व्याकुल हो जाते हैं, परंतु मेरे मित्रों, हमें जान लेना है कि परमेश्वर आज भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। सर्वे सर्वा वही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके हाथ से कुछ नहीं निकला है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा दांतों तले उंगली दबाए हुए नहीं है। वह आज की घटनाओं को देखकर घबराया हुआ नहीं है। वह अपनी योजनाओं और अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। वह मनुष्य के पापों के विरुद्ध निर्णय दे रहा है। जी हां, परमेश्वर की संतान के लिए उसके युग में यह एक शांतिदायक बात है। अश्शूरों ने परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त काम किया और अब उनके सर्वनाश का समय आ गया है। इस भविष्यवाणी में दिया गया है कि नीनवे नगर के विनाश का ब्यौरा, जो एक विस्मयकारी है। अतः यह एक ऐसा संदेश है जो एक अभक्त सामर्थी देश के आतंक के समय परमेश्वर की प्रजा को शांति देता है। परमेश्वर किसी भी अभक्त देश का सर्वनाश कर देगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप इतिहास को पढ़ करके देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक विश्व शक्ति शराब, स्त्री और गाना आदि के कारण ही नष्ट हो गई है। कोई भी राष्ट्र यदि इस स्थिति में हो तो आप निश्चय जाने कि वह विलोपन के द्वार पर है। आज संसार के सब महान देश नरक प्रवेश कर गए हैं। यही कारण है कि नहुम की पुस्तक हमारे लिए भी ऐसी अर्थपूर्ण पुस्तक है। लिखा हुआ है एलकोश वासी नहुम के दर्शन की पुस्तक। मैं प्रस्तावना में उल्लेख कर चुका हूं कि नहुम का जन्म उत्तरी राज्य इसराइल में हुआ था, परंतु वह दक्षिणी राज्य यहूदा में जा बसा था। वह उत्तरी राज्य के विषय में बहुत चिंतित था और शायद उसकी बंधुआई के समय वह जीवित था। उसका संदेश नीनवे नगर पर आने वाले दंड का था। तो आइए हम पढ़ते हैं नहुम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। ध्यान दीजिए, लिखा है जल उठने वाला, अर्थात अनन्य भक्ति चाहने वाला। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह चाहता है कि उसके जन केवल उसकी ही उपासना करें। जब कोई भी हो, मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा और पापों में लीन हो जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं, तब परमेश्वर जल उठता है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं परमेश्वर और मनुष्य की जलन में अधिक अंतर नहीं है। मेरे मित्रों, आप जो सोचते हैं वास्तव में अंतर वैसा नहीं है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3-6 पद में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पर करुणा किया करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु आप उस स्थान में आ सकते हैं जहां आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। जब आप पाप की छतरी खोल लेते हैं, तब परमेश्वर के प्रेम की सूर्य प्रकाश आप पर नहीं पड़ती, परंतु वह आपके लिए चमकता है। आप उदासीनता की छतरी खोल लेते हैं, आप परमेश्वर से मुंह मोड़ने और उसकी इच्छा पूरी नहीं करने की छतरी खोल लेते हैं। मेरे मित्रों, ऐसे अनेक छतरियां हैं जो यदि आप खोल लें तो आप परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश अपने ऊपर चमकने नहीं देते हैं, परंतु आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपके लिए जलन रखता है। इसका अर्थ है कि वह आपको चाहता है। परमेश्वर को आपकी संपदा नहीं चाहिए। हम प्रचारक तो आपसे मांगते ही रहते हैं, काश मैं आपसे कभी ना मांगू। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। यदि परमेश्वर के जन हमारे रेडियो प्रसारण का व्यय या खर्च उठा लें, तो आप कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं सुनेंगे। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं, आप चाहिए। और जब आप स्वयं को, अपने पैसे को, अपने समय को किसी और बात में लगाते हैं, तो वह जल उठता है। आप पाप में गिरते हैं तो वह जल उठता है। मैंने एक बार एक स्त्री को कहते हुए सुना, मेरा पति बहुत अच्छा है, वह मुझसे जलता नहीं। मेरे विचार में तो उसके पति के लिए यह प्रशंसा की बात नहीं थी। आज हमें उदार विचारों का होना आवश्यक है, विशेष करके लैंगिक आकर्षण के प्रति। उनके विचार में स्त्री यदि किसी भी पुरुष से संबंध कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु मेरे मित्रों, मैं कहता हूं कि यदि कोई स्त्री ऐसी है तो उसे कभी अच्छा पति नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा पति आपसे प्रेम करेगा और आपको सबसे अधिक चाहेगा। वह आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहेगा। यदि आप कहते हैं कि आपका पति नहीं जलता है तो मैं आपके लिए दुख मनाता हूं, क्योंकि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और इसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें संसार के पापों के साथ, शैतान के लोगों के साथ, प्रतिमा पूजकों के साथ बांटना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम केवल मेरे ही रहो। जी हां, परमेश्वर ऐसा कहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं कि वह जल उठने वाला परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। नहुम कहता है, यहोवा जल उठने वाला ईश्वर है। मैं प्रसन्न हूं कि वह ऐसा है। एक अच्छी स्त्री कहेगी, मैं अपने पति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, वह केवल मेरा है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, परंतु संसार इसे भूल चुका है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि आज तलाकों की संख्या प्रतिदिन अधिकाई से बढ़ती जा रही है। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आपके संबंधों में जलन होगी। आप अलग नहीं होंगे, परंतु आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला है। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। जी हां, परमेश्वर हमसे कहता है, तुम बदला मत लो, क्योंकि सबसे पहले तो तुम उचित रीति से बदला नहीं ले पाओगे। मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना क्रोध की अग्नि के यह काम करूंगा। मैं न्याय के साथ बदला लूंगा, मैं उचित काम करूंगा, मैं वस्तु स्थिति को समझता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। यह परमेश्वर का कथन है। परमेश्वर बदला लेने वाला है, और हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, परमेश्वर जो भी करता है वह उचित ही है। हम इस सत्य को मन में बैठा लें। और दूसरी ओर हमें यह बोध होना है कि हम अकिंचन प्राणी कुछ भी नहीं जानते। सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी कुछ नहीं जानता है। मैं तो टीवी पर विशेषज्ञों की वार्ता सुनता ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो बुद्धिमान कहलाते हैं और अपने आप को समझते भी हैं, वे वास्तव में निर्बुद्धि हैं। हम निर्बुद्धि हैं, और परमेश्वर जो भी करता है उचित ही करता है। यदि आपका विचार ऐसा नहीं है तो आप गलत हैं। परमेश्वर गलत नहीं है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो जहां तक परमेश्वर की बात है, आप समस्या में हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें नहीं बताएगा। वह बस कर देगा, कहेगा बस। वह इस जगत को अपनी इच्छा से चलाता है। हम कुछ पद प्रतिष्ठा के भूखे मनुष्यों को भी जानते हैं, परंतु वह अधिक नहीं रुके। ना तो हिटलर, ना मुसोलिनी, ना स्टालिन रहे। मेरे मित्रों, आज जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में हैं, वे कल अनजान हो जाएंगे। परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है और जगत का संचालन वह कर रहा है। लिखा है, यहोवा जलजलाहट करने वाला है। परमेश्वर मनुष्य के पाप से प्रसन्न नहीं होता है। चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वह पाप से अत्यधिक क्रोधित होता है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। जाति जाति को दंड देने में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। जैसा यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में लिखा है, अशुरों के पतन में परमेश्वर का महिमान्वन था। वे पाशविक, पापी तथा घृणित मनुष्य थे। परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी में मिलाकर उनका सर्वनाश किया। मेरे प्रियो, इसी में उसका महिमान्वन है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ही है। मेरी राय में आप परमेश्वर के मार्गों को स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर के काम करने का तरीका यही है। जी हां, परमेश्वर आपके पापों का न्याय अवश्य करेगा। इसलिए आप यह न सोचें कि आपके बारे में कोई नहीं जानता है। भली और अच्छी बात तो यही है कि आप अपने मनों को फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं, वह आपकी चिंता करते हैं और चाहते हैं कि आप बचाए जाएं। यदि आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं और आप बचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आ जाएं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और यीशु से कहें कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में पाप किया है, मैंने उन कामों को किया है जिसे मुझे नहीं करना चाहिए। आज इस वचन को सुनने के द्वारा मैंने इस बात को जान लिया है कि आप मेरे पापों का दंड मुझे देंगे। आज मैं अपने मनों को फिराकर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए, मेरे जीवन में आप आ जाइए, मेरे जीवन का संचालन आप कीजिए और अपनी महिमा के लिए मुझे प्रयोग में लीजिए। हर एक प्रकार की बुराइयां मेरे जीवन से दूर कीजिए। जी हाँ, जब आप इस प्रकार से प्रभु के सामने में मान लेते हैं अपनी बातों को और प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही वह आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि यूहन्ना के पत्र में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आप आज एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो। इज्जत गैरत में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा।
अपनों के पास